ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय का नाम है अंशुमान की वंशावली। यद्ययम् क्रियते भक्ष्यस् तर्हि माम् खाद पूर्वतः न जीवस्य विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययम् क्रियते भक्ष्यस् तर्हि माम् खाद पूर्वतः न जीवस्य विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययम् क्रियते भक्ष्यस् तर्हि माम् खाद पूर्वतः न जीवस्य विनायेन क्षणं च मृतकं यथा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यदि यदि अयम यह ब्राह्मण क्रियते स्वीकार किया जाता है भक्षः खाद्य तरही तब तो माम मुझको खाद खा लो पूर्वतः उसके पूर्व ना नहीं जीवश्य मैं जीवित रहूंगी बिना बिना येन जिसके पति क्षणम च एक पल भी मृतकम शव यथा सदृश। अनुवाद। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृतक तुल्य हूँ। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति में सती या सहमरण प्रथा है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी जलती चिता में स्वेच्छा से कूदकर अपने पति के साथ जल जाती है। इस श्लोक में ब्राह्मण पत्नी द्वारा इस संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। पति विहीन स्त्री शव तुल्य है, अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है, यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले ही कन्या को दान कर दिया जाए अथवा पति एक से अधिक पत्नियां पति के एक से अधिक पत्नियां हों, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए, यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव पराश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर और वृद्धावस्था में अपने सियाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनु संहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और वो झूठे ही अपने को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन कष्टमय है। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अपने पति के बिना शव मात्र है। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो आप सब ने ये तात्पर्य सुना होगा ध्यान से, उम्मीद है। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना मृतक तुल्य हूँ। और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये किस स्त्री की क्या स्थिति थी वैदिक संस्कृति में और क्या स्थिति है आधुनिक समाज में। तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जब श्लोक आया मेरे पास तो मैं सोचा था मैं लेक्चर दूँ या ना दूँ। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे समाज के लिए, विशेषकर इस कौन के हमारे पंजाबी भक्त समुदाय के लिए भी। तो मैं विशेषकर सभी भक्तों से प्रार्थना करूँगा और विशेषकर माता जी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि जो भी हम चर्चा करेंगे उसको खुले दिमाग से सुने और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मैंने तैयारी की है इस लेक्चर के लिए परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज की पुस्तक है वुमेन मदर और मास्टर्स, और चैतन्य चरण प्रभु का कुछ आर्टिकल्स थे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मैगजीन में। तो वहाँ वुमेन की क्या स्त्री की क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा पढ़ के कुछ समझ के मैंने कुछ तैयार किया है। तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसको आधे पौने घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। हम केवल टॉपिक को छुएंगे, एक एपेटाइज़र देंगे, फूड फॉर थॉट, कि हम आगे कुछ सोच सकें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रसंग, आप में से कुछ लोग प्रतिदिन नहीं आते, तो प्रसंग ये है कि राजा अंशुमन की वंशावली में गया थे सोदास, उनको विशिष्ट मुनि ने श्राप दिया कि वो नरभक्षी बन जाएंगे। हालांकि उनका कोई ऐसा दोष नहीं था, लेकिन वो नरभक्षी, उनके अंदर वो प्रवृत्तियाँ आ गई और वो जंगल में घूम रहे थे तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संग करते हुए देखा, और तभी उनको एहसास हुआ कि उनको बहुत भूख लग रही है और नरभक्षी हैं तो वो ब्राह्मण को खाने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण को खाने जा रहे हैं तो जो ब्राह्मणी हैं वो कई तरह की प्रार्थनाएँ कर रही हैं, उसको उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं कि ब्राह्मण हत्या आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप है और ये ब्राह्मण बहुत ही सुशील है, इसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं और आप एक राजऋषि हो, आपको ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि वो नहीं मान रहे हैं, वो खाने को भी तैयार हैं। तो फिर अंत में उसकी पत्नी ने यही बोला कि आप इसको खाओगे तो उसको खाने से पहले आप मुझे खा जाओ, क्योंकि इनके बिना मैं मृतक समान हूँ, है ना। तो शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्री को हमेशा निर्भर रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र रहेंगे तो बहुत, जिसे कहते हैं, कष्टमय जीवन है। और सती की प्रथा बताई है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमने प्रभुपाद के तात्पर्यों में, लेक्चर्स में बहुत बारी सुना है कि जो स्त्री हैं उनको हमेशा पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और जब विशेषकर स्त्रियां इस कौन में ये बात सुनती हैं तो इतना कैसा लगता है सुन के। कई बारी माताजी लोग आती हैं, बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें बताया गया कि स्त्री कम बुद्धिमान है, हमेशा उसको निर्भर रहना चाहिए, तो बड़ी ईगो हर्ट होती है। जो पुरुष लोग हैं वो इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते, बोले ठीक तो लिखा है, करना ही चाहिए, है ना। तो पुरुष के लिए तो बड़े फेवरेट श्लोक हैं, कुछ श्लोक हैं भागवतम में जो पुरुषों को बड़ा बल देते हैं, बोले देखो क्या क्या लिखा है, तुम कैसे हो, देखो ऐसे ऐसा होना चाहिए। और ज़्यादातर श्लोकों में स्त्री के धर्म की चर्चा होती है, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पति के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो क्यों स्त्री को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्यों ऐसा बोला गया है कि उनको हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, पिता के, पति के, पुत्रों के, अकेले नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है। तो शीला प्रभु अपने तात्पर्यों में अलग अलग जगह इसके कारण बताते हैं। सबसे पहला तो गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में, अधर्म अभिवात्योत्पदश्यंति कुलस्त्रिय स्त्री दृष्टा सुवासने जायते वन संकर। स्त्रियों की रक्षा करनी इसलिए जरूरी है कि स्त्रियों जननी हैं, संतान उत्पन्न करती हैं, और जितना स्त्रियों के सतीत्व के गुणत्व होगी, क्वालिटी होगी, उतनी अच्छी जनसंख्या होगी। आज समाज की समस्या ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, आज पूरे मानव समाज की समस्या उस जनसंख्या की जो क्वालिटी है वो बदतर है, बहुत ही ख़राब है, लो ग्रेड जनरेशन हो रही है। तो लेकिन बाकी सरकारें क्या करें, नहीं जनसंख्या को कम करो, कम तो हो कर रहे हैं, बर्थ रेट तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कैसे उत्पन्न हो रही है, तरह तरह के उत्पाद मच रहे हैं, क्यों, सही संस्कारों के साथ संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तो स्त्रियों को संरक्षित करना आवश्यक है कि वो सतीत्व का सही पालन कर सके और सही संतान उत्पन्न कर सके। और प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको एक्सप्लॉयट करें, उनको पर्दे में बंद कर दें, उनको कोई फ्रीडम ही नहीं है, ना अपनी कोई सोच है, कुछ ऐसा मतलब नहीं है। और उनको संरक्षण देने का ये भी मतलब नहीं है कि उनके लाइफ को माइक्रो मैनेज करें, नहीं, संरक्षण का मतलब है उनको आदर देना। मेरी संस्कृति में स्त्री को पूजा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ जिन घरों में, जिस समुदाय में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। और यत्र सिन्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफलक क्रिया, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती, उनका शोषण किया जाता है, वहाँ सारे के सारे क्रियाएं जो हैं, काम हैं, निष्फल हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे दो महत्वपूर्ण ग्रंथों में, रामायण और महाभारत में, मुख्य जो उसका आधार रहा है, स्त्री का अपमान। सीता मैया का अपहरण हुआ तो लंका में युद्ध हुआ और रावण का पूरा के पूरे कुल का नाश हो गया, और इसी ढंग से द्रौपदी का अपमान किया कौरवों ने, उनके पूरे कुल का नाश हो गया, है ना। तो आज के समाज में स्त्री को पूरा आदर नहीं दिया जा रहा, तो पूरे समाज में अराजकता है, अशांति है। तो बहुत आवश्यक है कि स्त्री को सही ढंग से संरक्षण दिया जाए। 1945 में शिला प्रभुपाद जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे हावड़ा में, तो उन्होंने देखा उनके सामने एक युवती बैठी थी जो पहली बारी अपने पति के घर जा रही थी, होता ना एंगेजमेंट के बाद गोड़ा होता है क्या होता है, से जा रही थी वो, और बहुत बड़ा उसे पर्दे से ढका हुआ था अपने आप को। साथ में एक सो कॉल्ड आधुनिक स्त्री जा रही थी, उस समय की आधुनिक स्त्री, तो मजाक उड़ा रही थी, इतना बड़ा पर्दा है, वो बाबर उसको उठाती थी, वो फिर उसने बंद कर दिया, फिर उठाया मजाक करते, फिर उसने बंद कर दिया। तीसरी बार उसने उठाया तो गांव की उसने खींच के थप्पड़ मारा उसका और पूरे कंपार्टमेंट में जो लोग थे सब हंस पड़े जोर से, बोले ठीक किया ठीक किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो स्त्रियों के लिए संकोच होता है, शाइनेस है ना, वो उनका उनके जिसे कहते हैं कवच है, वो उनकी रक्षा करती है। लेकिन आजकल के जो बताया जाता है, जो इनकरेज किया जाता है मॉडर्न कल्चर में कि ओपन हो जाओ, है ना, कोई ये संकोच वगैरह शर्म करना, ये तो तकिया उसी बातें हैं। तो लेकिन ये स्त्रियों के कवच था, तो एक कारण है कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी कॉलेज में कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो यही बोले थे कि द वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। तो एक यंग लड़की आई, बोला किससे प्रोटेक्शन करना है, क्यों प्रोटेक्शन करना है। तो प्रभुपाद ने बोला फ्रॉम लस्टी मैन, कामुक पुरुषों से। दूसरा कारण यह है कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत सरल होती है, बच्चों की तरह उनका नेचर इमोशनल होता है और इजिली उनको बहकाया जा सकता है। तो जो हमारे अक्सर लोग, ये कई माता जी लोग आके पूछते हैं कि औरतों को, माताओं को ऐसे क्यों बोला कि वो कम बुद्धिमान है, जबकि हम देखते हैं जब बोर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तो माताओं के नंबर ज़्यादा होते हैं लड़कियों के नंबर लड़कों से, है ना, हर जगह। और हम अपने भक्ति विषय ग्रुप्स में भी देखते हैं, है ना, कई बार माता जी लोग बहुत सिंसियर होती हैं भक्ति में, प्रभु जी लोगों के पास टाइम नहीं है, कम सिंसियर होते हैं दिखाते हैं। और तो फिर ऐसा क्यों बोला गया वो कम बुद्धिमान है, तो ऐसा नहीं है। बुद्धिमता केवल वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग नहीं है। वैदिक संस्कृति में बुद्धि का अर्थ ये होता था कि पदार्थ और आत्मा के बीच में भेद देखना, ना जड़ और चेतन के बीच में भेद देखना, शरीर और आत्मा के बीच में भेद देखना। तो इस संसार में हम बदजीव सभी देहात्म बुद्धि में हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि जो स्त्री शरीर में देहात्म बुद्धि ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आधुनिक युग में हम देखते हैं कि स्त्रियों को एक सेंस ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी फिल्म हो, उनके अर्धनग्न शरीर में दिखाया जाएगा, बहुत आकर्षक रूप से दिखाया जाएगा। साधारणतः स्त्री का रूप बहुत आकर्षक, बहुत विमोहित करने वाला है। जब ऐसा पूरा का पूरा कल्चर है तो स्त्रियों को भी ऐसा लगता है कि उनकी जो रियल उनकी इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वो उनके सुंदर शरीर में है, उनके आकर्षक लगने में है। तो ऐसी मानसिकता के साथ ये रियलाइज़ करना कि मैं शरीर नहीं आत्मा और कठिन हो जाता है, विशेषकर जो वो स्त्रियाँ जो कि भक्ति में नहीं जुड़ी हुई, जो प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ी हैं उनकी मानसिकता अलग है, लेकिन जो साधारणतः स्त्रियाँ भक्ति में नहीं जुड़ी उनके लिए देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना ज़्यादा कठिन है पुरुषों के मुकाबले में। तो ऐसी मानसिकता के साथ उनको बहुत ही आसानी से जो पुरुष शोषण करना चाहते हैं उनको बहका सकते हैं। वैदिक संस्कृति में स्त्रियों की नेचर को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज किया गया है, क्योंकि वो जननी है तो उनके दो पहलू हैं एक स्त्री के व्यक्तित्व के। एक पहलू है जो कि वैदिक संस्कृति में जिस पर जोर दिया जाता है, वो मातृत्व का, माता बनने का उनका रोल, मैटरनल एस्पेक्ट्स। दूसरा एस्पेक्ट है उनका स्त्रीत्व का, नारीत्व का, उनका शरीर, उनका बाहरी रूप रंग कैसा है। तो जो वैदिक संस्कृति में उनके मातृत्व के रोल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि उनको माँ का रोल प्ले करना है, और सभी स्त्रियाँ माँ बन के अपने आप को परिपूर्ण महसूस करती हैं। और आधुनिक समाज में उनके स्त्री तत्व नारीत्व कैसे दिखती हैं, कैसे रूप रंग है, क्या उनका व्यक्तित्व बाहरी रूप से उनकी क्या अपील है, उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो क्या हो रहा है फिर, अगर वो इमोशनल हैं तो मॉडर्न टाइम्स में उनका ज़्यादा शोषण हो सकता है, लेकिन वैदिक संस्कृति में उनकी जो इमोशनल नेचर है, उनका मातृत्व का जो रोल है, वो उनको बहुत हेल्प करता है बच्चों के लालन पोषण में। क्योंकि पिताजी लोग जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे ढंग से नहीं पाल सकते, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्या रात को जाग जाता है, वह कर रहा है, कल सुबह काम पे जाना है, अभी ये क्या मलमूत्र त्याग दिया है, क्या है नो? और बच्चे कुछ भी कर लें, बच्चों का व्यवहार कोई लॉजिकल थोड़ी होता है, उनको जो माताएं हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो उनको अच्छे ढंग से उनका ध्यान रख सकती हैं। तो ये जो इमोशनल नेचर है उनको भगवान ने इसीलिए दी है कि वो बच्चों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दे सके, है ना, उनको शिक्षा दे सके, प्रशिक्षण दे सके, उनके भौतिक आध्यात्मिक मानसिक रूप से उनका अच्छा विकास हो। और वैदिक संस्कृति में तो स्त्रियों के लिए जो कैरियर ही था उनके बच्चे थे, अच्छे ढंग से बच्चों को पालना स्त्री की सफलता मानी जाती थी, है ना, अच्छा चरित्र उनको देना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो वही इमोशनल नेचर, अगर प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो इमोशनल हैं तो भक्ति को भी बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान के प्रति जो उनके सेंटीमेंट्स हैं, अगर वो माता के अंदर वो है और उसी सेंटीमेंट्स को बच्चों को स्थानांतरित कर रही है, तो बच्चे भी अच्छे भक्त बनते हैं। तो ये जो इमोशनल नेचर है वैदिक संस्कृति के हिसाब से उनको दी गई है भगवान के द्वारा ये, क्योंकि वो बच्चों का अच्छे ढंग से देखभाल कर सकें। लेकिन आधुनिक समाज में जबकि वैदिक संस्कृति को बिल्कुल नकारा जा रहा है, यही इमोशनल नेचर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि तो उनको उनके आसानी से उनको इमोशंस में दे कैन गेट कैरिड अवे। तो इसलिए स्त्रियों को संरक्षण में रहना आवश्यक है, ये दूसरा कारण था। तीसरा हम देखते हैं कि स्त्रियों का जो उनका शरीर है वो एक बिल्कुल अलग है, कैसे कि जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि पुरुष कभी गर्भवती नहीं होंगे, है ना, बच्चे को जन्म स्त्री देती है, अपने घर में 9 महीने स्त्री ही रखती है, तो उस समय उसको विशेष संरक्षण चाहिए। बच्चे के उत्पन्न होने के बाद वो स्तनपान कराती है तब उसको विशेष संरक्षण चाहिए, और कुछ आयु के बाद 40-45 साल के बाद स्त्रियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव आता है, तब उनको विशेष ध्यान और विशेष प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जिनमें उनको संरक्षण चाहिए। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि पुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति सही ढंग से नहीं हो रही थी वैदिक संस्कृति में, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, तो उन्होंने प्रोटेक्शन के नाम पे, संरक्षण के नाम पे स्त्रियों का शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे कि सती का, सती स्वेच्छा से होती थी, स्त्रियां अपने पति से इतनी अटैच होती थी, वैदिक संस्कृति में पुरुष और स्त्री ज़्यादा नहीं बोलते थे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, लेकिन कमिटमेंट ज़्यादा होती थी। आजकल के टाइम में ये अलग अलग दिखावे हैं, है ना, क्या है वो, कौन सा दिन है, वैलेंटाइन डे, और ये करना वो गिफ्ट देना, ये दिखाना वो दिखावा करना, शादी होगी तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ दोनों स्वर्ग से उतरे हैं, है ना, और क्या क्या होगा, और उसके बाद बनती नहीं फिर, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति में कमिटमेंट होती थी, केवल शाब्दिक बातें नहीं होती थी, कहने की बातें, कमिटमेंट होती थी, कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि भगवान कर्मों का फल है, इकट्ठे रहते थे। और पुरुष स्त्री इतने आसक्त होते थे, स्त्री को लगता था पति जा रहा है, उसके विरह की अग्नि ज़्यादा कष्टदायक होगी बल्कि ये चिता की अग्नि से, तो स्वेच्छा से आप सोचिए वो कूद जाती थी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जलती आग में कूदना, स्वेच्छा से होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में समाज में कुछ ऐसे लगा कि पुरुषों का आध्यात्मिक स्तर कम हो गया, उनको बोला इसका पति तो चला गया, अब कौन पालेगा पोलेगा इसको, कौन इसका ध्यान रखेगा, जबरदस्ती उसको अग्नि की चिता की अग्नि में डालते थे, जबरदस्ती करते थे, तो ये शोषण है। तो अगर पुरुष तभी स्त्री के संरक्षण कर सकता है कि पुरुष का खुद का आध्यात्मिक स्तर हो, अगर आध्यात्मिक स्तर उसका नहीं है तो संरक्षण के नाम पर फिर शोषण होता है, और इसी शोषण के कारण ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, है ना। पाश्चात्य देशों में भी ऐसा था, ईसाई धर्म में ऐसा है कि अगर पुरुष ये बता दे कि इस स्त्री का चरित्र ठीक नहीं है बिना किसी प्रूफ के, तो पूरा पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती थी, विच हंटिंग बोलते थे उसको, विच डिक्लेयर कर दिया जाता था, तो वहाँ पर भी ऐसे इतना शोषण हो रहा था, तो इसलिए एक फेमिनिज्म शुरू हुआ, है ना, क्यों स्त्रियों को भी समान अधिकार देना चाहिए, है ना, कब तक हमारा शोषण होता रहेगा, ठीक है ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन निकाला गया कि हमें भी एक छूट दी जाए, हम भी खुल के इंद्रतृप्ति कर सकें, है ना। सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो खुल के इंद्रतृप्ति का मतलब क्या है कि पुरुष जहाँ मर्जी जाके मैथुन करें, हम भी जहाँ मर्जी जाके मैथुन करें, लेकिन बुद्धि लगाएं, उसका कष्ट कौन उठाएगा। प्रभुपाद कहते हैं सबको फ्री सेक्स की फैसिलिटी मिल गई, शोषण तो स्त्रियों का ही हो रहा है, पुरुष लोग और इसका फायदा उठा रहे हैं। गर्भवती कौन होगी? स्त्री होगी, पुरुष तो चला जाएगा, बाद में या तो वो अबॉर्शन करेगी या सरकार से कुछ पैसा मांगेगी, शोषण तो स्त्री का ही हो गया, इसमें उनका लिबरेशन कहाँ होगा। उनका लिबरेशन का मतलब ही नहीं, उनका कोई आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। भगवानहीन समाज में क्या लिबरेशन? लिबरेशन क्या? इंद्र तृप्ति के अटकलों से मुक्त होना, ये लिबरेशन है। इसमें तो और दुखदायक जीवन होगा। और हम देखते हैं जब से ये लिबरेशन शुरू हुआ है, वुमेन लिबरेशन, स्त्रियों के कष्ट बढ़ गए हैं। पहले कहाँ उसको गृह लक्ष्मी बोला जाता था, है ना, घर की लक्ष्मी है, और पति आता था कमा के आता था, वो चुपचाप बैठी हुई है, पति उसको आभूषणों से सजाता था, वो लक्ष्मी की तरह रहती थी, पति नौकर बन के रहता था। बोले इक्वल राइट्स, मैं लक्ष्मी नहीं, मैं भी नौकरानी बनूंगी। कहाँ की समझदारी है, देखिए कहाँ की समझदारी है। ध्यान से सोचने वाली बातें हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस जंग से ये पूरा का पूरा ये मॉडर्न सिविलाइजेशन आप देखिए कि पहले स्त्रियों का शिक्षा अलग होती थी, पुरुषों की शिक्षा अलग होती थी। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी सतीत्व का, कैसे आपने पालन बचा के रखना है, इसको कैसे पालन करना है, कैसे घर की देखभाल करनी है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। पुरुषों की ट्रेनिंग अलग होती थी। अब दोनों का एक ही स्कूल है, एक ही ट्रेनिंग है, दोनों के लिए सफलता का एक ही क्राइटेरिया है, अच्छा कैरियर, कितना पैकेज कमाते हैं। अब पुरुष और स्त्री दोनों काम पर जाते हैं, दोनों लाखों रुपये कमा रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, पहले तो बच्चे को पैदा करेंगे ही नहीं। आप देखिए कितना अज्ञानता के कारण कितने पाप कर रहे हैं। बोले मैथुन करने का अधिकार है, संतान उत्पन्न करने का जिम्मेवारी नहीं लेंगे, ये हमारी चॉइस, हम प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली की। प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? नरक में जाने की। ये कितना दुख वाली बात है, प्रभुपाद को इतना दुख होता था। और गलती से बच्चा हो गया, नहीं अभी हम नहीं चाहते, तो गर्भपात कर लेंगे, अबॉर्शन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे मॉडर्न समाज में, आधुनिक संस्कृति में मुख्य उद्देश्य है इंद्र तृप्ति करना, बस उसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। जितनी इंद्र तृप्ति करना है कर लो, जितना शोषण करना है दूसरे का कर लो, बस। तो पहले अच्छा एजुकेशन ले लिया तो सब बड़े गर्वित महसूस कर रहे हैं, हमारी बेटी ऐसे है जी, ये तो बहुत पढ़ लिख गई और बहुत अच्छा है। इनको जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, बहुत ज़्यादा पे पैकेज मिल जाता है, उसके लिए वैसे पति नहीं मिलता, फिर ऐसा पति मिलेगा ही नहीं, फिर पति भी चाहिए। 30 साल हो जाते हैं शादी करते करते, फिर 35-40 तक संतान ही उत्पन्न नहीं करनी, 40 के बाद कभी सोचा एक संतान उत्पन्न कर ली, उसका क्या स्वस्थ होगा, और हुआ भी तो उसको क्रश में छोड़कर चले गए, क्योंकि वो अब ऑफिस में जीएम बन गई है, उसका कैरियर है, वहाँ उसको फुलफिलमेंट मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बच्चा क्या करेगा बताइए, क्या होगा संतान का। अमेरिका की यही समस्या आज, वही बच्चा बगेगा कि ड्रग एडिक्ट बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, तो कहाँ समाज में कहाँ शांति आएगी, आ सकती है क्या? और ये चल रहा है। और अब क्योंकि वो भी पुरुष की इतना लाखों रुपए कमाती है, पूरा दिन काम पे रहती है, उसको भी स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको भी सिगरेट पीनी है, उसको भी मदिरा पीनी है, उसको भी लेट नाइट को आना है, और घर में आ रही है तो कोई माइंड नहीं कर रहा क्योंकि पैसे भी ला रही है। तो धीरे धीरे हम मिडिल क्लास के लोग भी इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है, ठीक आजकल ऐसे ही होता है, हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं चल रहा है, जो सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। धीरे 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 हमारा जो सेंसिबिलिटी है कम होती जा रही है। तो किस दिशा में जा रहे हैं? अगर ऐसा करके हम ज़्यादा खुश रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुश रह सकते हैं ऐसे समाज में, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये बहुत समझने की बात है कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों का संरक्षण क्यों बताया गया, ये सती की प्रथा क्यों थी, इसके पीछे पूरा वैदिक फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। हम किसी भी जाएंगे, कोई देख लेंगे कुछ चीज़ हो रही है, संस्कार हो रहा है, जब तक उसके पीछे उस संस्कार के पीछे कोई फिलॉसफी सिद्धांत नहीं पता होगा तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्या सिद्धांत था, क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन रखा गया था, क्यों उनको इतना आदर दिया जाता था? इसमें बताया गया है कि वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम को इस हिसाब से बनाया गया है कि हमारे दो प्रकार के स्वधर्म हैं, एक शरीर का स्तर पर है, एक आत्मा के स्तर पर है। तो वर्णाश्रम की ऐसी व्यवस्था होती थी कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति करें। और धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी जो अटकल होती थी स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता था। तो कैसे वर्णाश्रम में सिस्टम था कि धीरे धीरे इस आपसी आकर्षण से हम ऊपर उठें, क्योंकि यही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जो जिनको मनुष्य योनि में अभी स्त्री का देह मिला है वो पुरुषों से आकर्षित हैं और पुरुष स्त्री से आकर्षित हैं, और शरीर त्यागने के समय तक हम इस आकर्षण से ऊपर नहीं उठे तो अगले जन्म में पुरुष स्त्री बनता है, स्त्री पुरुष बन जाती है, और यही चलता जा रहा है। अगर कुछ धर्म का पालन किया है, मनुष्य योनि मिलनी है, तो अल्टरनेट हो रहा है ना, स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, क्योंकि दूसरे पति आसक्ति रहती है। तो जब तक इस आपसी आकर्षण से ऊपर नहीं उठेंगे हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो पूरा वैदिक संस्कृत इस पर आधारित है, और साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों को भी पूरा करना और आध्यात्मिक प्रगति भी करना। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है ऐसे आश्रमों की व्यवस्था करना कि धीरे धीरे हमारा देहात्म आकर्षण कम होता जाए, ये पूरी इसके प्रति फिलॉसफी थी। और नारद मुनि जी ने बताया भागवतम में स्त्री और पुरुष यानी कि फायर एंड बटर, अग्नि और मक्खन, और वैदिक संस्कृति में उस पुरुष को वीर माना जाता था, हीरो माना जाता था, जो कि अपने इस इंद्रियों को संयमित कर सके, यानी कि उस मक्खन को सर्वश्रेष्ठ मक्खन माना जाता था जो अपने आप को पिघलने से बचा ले, जो अपने आप को अग्नि से दूर रख सके और पिघले ना, उस मक्खन को सब सर्वश्रेष्ठ मक्खन माना जाता था। तो यानी कि पुरुषों में जो अपनी इंद्रियों को संयम, उनके अंदर संयम जो जिसको होता था उसका आदर किया जाता था, इसलिए ब्रह्मचारी और सन्यासियों का आदर किया जाता था, और ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रेरणा देते थे पूरे बाकी समुदाय को कि वो भी अपने अंदर धीरे धीरे कल्टीवेट करें, इस आकर्षण से ऊपर उठे। और स्त्रियों को क्या सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, वो उनको हीरोइन माना जाता था, उस स्त्री को जो कि अपने आप को बचा कर रखे, उस अग्नि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था जो ढकी रहे और कम से कम मक्खनों को पिघलाए, है ना, ठीक है, उसका एक पति होता था उसको पिघला सकती है बस। आज के इस टाइम में बिल्कुल उल्टा है, आज में उस व्यक्ति को हीरो माना जाता है जिसे कई अफेयर्स हो, क्या स्मार्ट व्यक्ति है ना, कितने इसके अफेयर्स हैं, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसको हीरो माना जाता है, और उस स्त्री को माना जाता है कि हाँ उसके पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, कितनों का दिल पिघला दिया उसने। तो ये कितना डिफरेंस है देखिए, है ना। और हम सब के अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्ति भी बुरी प्रवृत्ति भी है। वैदिक संस्कृति में अच्छी प्रवृत्तियों को उत्साहित किया जाता है, और आज के इस टाइम में जो चारों तरफ उत्तेजनात्मक वातावरण है, हमारे अंदर हमको और कामुक बनाया जाता है और लस्टी फीलिंग्स जनरेट हो रही है, ऐसे आप चारों तरफ आप देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, इन सब बातों को समझें और हमारे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और पूरे समाज की उन्नति के लिए। तो जो इसीलिए क्या होता था, वैदिक संस्कृति में अनरिस्ट्रिक्टेड मिक्सिंग नहीं होती थी, है ना, और उसको संभाल के रखा जाता था। तो कैसे, अब ये समस्या हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि जिस दिशा में आधुनिक समाज जा रहा है, अब प्रश्न ये उठता है तो क्या करें, अब स्त्रियां क्या काम करना बंद कर दें, घर पे बैठी रहें, है ना, अब इतने पढ़ लिख गई हैं, कहीं PhDs कर ली हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो क्या बंद कर दें सब, अब घर में बैठी रहें, क्या चाहते हैं आप, अब घर में बैठ के भी क्या करेंगे, है ना। पहले क्या होता था, सारा घर का काम खुद करना होता था, गेहूँ भी खुद पीसनी है चक्की से, मसाले भी खुद कूटने हैं, अब मशीन्स आ गई हैं, कुछ करने को ही नहीं है। पहले होते थे 7-8-10 बच्चे होते थे वही टाइम ले लेते थे अपना, उनको संभालते रहो, अब वो कोई बच्चा ही नहीं है या एक ही बच्चा है, क्या करेंगे घर में बैठ के, और ऊपर से आपके पास टाइटल है, आपने PhD की हुई है, आप डॉक्टर हैं, क्या घर में बैठ के क्या करो बताइए। तो ऐसे कुछ माताएं होती हैं वो बहुत डिप्रेस हो जाएंगी, कुछ करने को ही नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य को लगाया कि ये फिलॉसफी को हम समझें, जो वैदिक संस्कृति के पीछे सिद्धांत क्या था, ये स्त्रियों को बाहर निकलना कम निकलना है, वैदिक संस्कृति में जो रिस्पेक्टेबल फैमिलीज के स्त्रियां होती थी वो अपना चेहरा सबको नहीं दिखाती थी, वो उनके दर्शन दुर्लभ होते थे, उनका उनकी सुंदरता हर किसी के लिए नहीं थी। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जब निमाई पंडित प्रकट हुए तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में थे, तो सीता ठाकुरानी वहाँ से कैसे आई, पालकी में बैठ के आई। वहाँ भक्ति सिंह सभी ठाकुर महाराज कमेंट्री में लिख रहे हैं ये संस्कृति थी, अच्छे घर की स्त्रियाँ ऐसे खुले नहीं घूमती थी, तो संभाल के रखा जाता था। तो क्या कह रहे थे हम, तो वैदिक संस्कृति के पीछे जो सिद्धांत है उसको समझना है। सिद्धांत यही है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस जीवन में हमें अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है इससे ऊपर उठना है, क्योंकि यही हमारे बंधन का कारण है। और साथ साथ में क्यों, जब तक हम पुरुष और स्त्री की देह में हैं अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। अब बिल्कुल एज इट इज हम वैदिक संस्कृति को उतार नहीं सकते, अभी इस्कॉन में ऊंचे स्तर पे भी ये डिस्कशंस हो रही हैं कि कितना ट्रेडिशनल रहा जाए कितना मॉडर्न रहा जाए, है ना। क्या आधुनिक समाज में जो तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं इन बदलावों को अपने साथ एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपनी अप्रोच में, या फिर जो आदर्श है वर्णाश्रम का पालन करना उसके पीछे लगे रहें, करवा के ही रहेंगे। कोई प्रभुपाद ने कहा है कि पूरे समाज की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने बोले कृष्णा कॉन्शियस जो आंदोलन है समाज को बदलने के लिए, ये नहीं है कि समाज को देकर हम बिल्कुल बदल जाएं, है ना। तो कैसे इसमें बैलेंस लाएं, अगर हम बिल्कुल कहेंगे नहीं जी स्त्री तो बिल्कुल पर्दे में रहनी चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी, घर में बैठेगी, तो आपको क्या लगता है प्रचार बढ़ेगा आगे? नहीं बढ़ेगा, इस अप्रोच के साथ हम कर ही नहीं सकते। और कहें ठीक है जो आधुनिक समाज में हो रहा है होने दो, उसके साथ साथ जितना हो जाए ठीक है, तो इसका भी हम परिणाम देख रहे हैं। आजकल भक्तों के बीच में भी विवाहित जीवन सुखी नहीं है, टेंशन्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, सारी फिलॉसफी को जानते हुए भी, तो क्योंकि बाहर के समाज का कुप्रभाव पड़ रहा है, तो फिर क्या करें, कहाँ बैलेंस स्ट्राइक करें। तो इसमें एक बैलेंस लाने की आवश्यकता है। अगर समझ लीजिए जो माता जी हैं और उसको हम उत्साहित करते हैं कि आपका जो मुख्य कैरियर है वो बच्चों का पालन पोषण है, इस बात को मतलब कि कोई भी अगर हम जिसे कहते हैं अपने समुदाय में किसी वैल्यू को एनकरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी देना होगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मचारीज हैं, और ये ब्रह्मचारीज हैं ये अच्छे अच्छे घरों से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पे पैकेज छोड़ के आए हैं, तो जब यहाँ आते हैं तो उनको बहुत आदर दिया जाता है, गुणगान किया जाता है, देखो क्या क्या छोड़ के आए और यहाँ पे ऐसे है। अगर ऐसा ना होता और बोलते कितना बेवकूफ़ है, देखो अच्छे जॉब को छोड़ कर यहाँ आ गया, कुछ प्रॉब्लम होगी इसके साथ, वहाँ बाहर कोई सफलता नहीं मिल रही होगी तभी आ गया, थका हारा होगा तभी आ गया, है ना। ऐसा बोलते तो कोई भी ना आता, लेकिन यहाँ पे उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, वो भी उत्साहित अनुभव करते हैं। आजकल माताओं के समाज में क्या है, माता जी लोग भी आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, आप कहाँ जाते हैं, मैं नोएडा में जाती हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा जाती हूँ, मैं मानेसर जाती हूँ, मैं ये जॉब है मेरा वो जॉब है, कोई बीच में खड़ी हो आप क्या करते हैं, मैं तो घर में ही बैठती हूँ। हाँ क्या करते हैं घर में भाई, तो अच्छा, तो बेचारे को इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाती, मैं तो कहीं की नहीं हूँ, है ना, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस यही सारा चल रहा है। तो इसको बहुत ग्लैमराइज किया गया है, वर्किंग वुमेन को बहुत ग्लैमराइज किया गया है कि एक जैसे वर्किंग वुमेन क्या हो गई, बड़ी शक्ति आ गई आपके पास, इट इज एम्पावरमेंट, वुमेन इज बिंग एम्पावर्ड, उसके पास गाड़ी की चाबी है, स्मार्टफोन है, सब कुछ है, कुछ भी कर सकती है, तो एम्पावरमेंट महसूस हो रही है। और बेचारी जो घर में बैठी है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को बड़ा वो हारी हुई महसूस कर रही है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। अगर हम अपने डिवोटी सर्कल में ऐसी माताएं जो उन्होंने ये डिसीजन लिया नहीं अभी मैं घर में बैठ के बच्चों की देखभाल करूंगी, उसका गुणगान किया जाए, अरे वाह बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, तो प्रभुपाद की इच्छा को आप पूरा कर रहे, वेरी गुड, तो ऐसा एनकरेजमेंट मिलेगा तो सब बोलेंगे ठीक है। जैसे आप ब्रह्मचारीज एनकरेज होते हैं वैसे माताएं भी एनकरेज होंगी, कि सब कुछ जो ट्रेंड चल रहा है उससे बिल्कुल उल्टा जाना। आप कहेंगे नहीं ब्रह्मचारी का तो रोल हम देख सकते हैं, वो अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छे लेक्चर देते हैं, प्रचार करते हैं, माताएं जो घर में बैठी उसका कोई हमें लगता नहीं कंट्रीब्यूशन है, नहीं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे जाके समाज, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, उनको सही शिक्षा प्रशिक्षण देना बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन को हम एनकरेज करें। और ये भी नहीं है कि स्त्रियों को हमेशा घर पे ही बैठना है। अगर हम देखें वैदिक संस्कृति में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि स्त्रियों ने काम किया, तो बता सकते हैं आप भागवतम से, महाभारत से ऐसे उदाहरण कि स्त्रियों ने भी अपने परिवार के पालन करने काम धंधा किया। हाँ, लाल मरीच की मदर मेड सर्वेंट थी। यस। और सीता माता क्या? नहीं नहीं वो तो नहीं, इतना नहीं। ठीक, हाँ दशरथ के साथ युद्ध में गई थी माता के कई, देखो मथुरा में सर्वेंट थी। और हैं झांसी भने, वैदिक संस्कृति की बात करें। गोपियों को देखते हैं, स्वयं गोपियां मक्खन दूध दही लेके आती थी, कृष्ण को रास्ते में पकड़ते वो बेचने तो जाती थी, कृष्ण की इतनी लीलाएं ऐसे ही हैं। और नित्यानंद के जानवा माता पूरे आध्यात्मिक वो गुरु थी, आचार्य थी। द्रौपदी कैसे हैं? गुप्तवास में, हाँ वो तो गुप्तवास ठीक है, लेकिन नॉर्मल उसमें हम देखते हैं कृष्ण लीला में फल वाली आती है, वो ऐसा नहीं कि भगवान हैरान हो गया, अरे तुम कहाँ से आ गए, तो प्रभु जी को आना चाहिए था। वो चुपचाप गए, नॉर्मल था, इसका रूटीन था ना, वो अंदर से गेहूं लेके आए। गोपियां थी, फल वाली थी, मथुरा में कौन थी? कुब्जा, चंदन लेके जा रही थी कंस के पास, कंस को लगाने के लिए। महाभारत में सत्यवती थी, हाँ, लेकिन ये आप दूसरे चीज का उदाहरण दें, हम दे रहे हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति में भी स्त्रियां भी जरूरत पड़ने पे काम करती थी। तो ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति बहुत कट्टर है, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास टैलेंट हैं, तो ऐसे कुछ अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगा सकती हैं। कई ऐसे हम माताओं को जानते हैं जो घर बैठे बैठे काम कर सकती हैं, ऐसा होम एट वर्क एट होम का है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अपने स्किल्स को जो कि स्त्री के जो गुण होते हैं, सिलाई करना, कुकिंग करना, उसको और निखार सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, सोचेंगे तो बहुत सी ऐसी फील्ड्स निकल सकती हैं। और आवश्यकता पड़ने पर अगर ठीक है तो कम घंटे काम करके, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये रखें कि जो उनका मातृत्व का रोल है, एक माता का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको बचा के रखेंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है। और ऐसे जो स्त्रियां ऐसा डिसीजन ले रही हैं, उनको हम एनकरेज करें ना, ताकि वो इसमें आगे बढ़कर आए। और दूसरा, हम लोग जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, एक कोई फॉर्म कम्युनिटी विकसित करें जहाँ पर आदर्श जीवन हम दिखा सकें। शहरों में रहते हुए एक आदर्श जीवन का उदाहरण देना इतना आसान नहीं है, लेकिन अलग से कम्युनिटी बना के हम दिखाएं कि क्या स्त्री का धर्म का पालन किया जाता है, क्या पुरुष के धर्म का पालन किया जाता है, वो एक उदाहरण हम स्थापित कर सकते हैं। और शहरों में रहते हुए हर एक की जैसी स्थिति है, उस स्थिति में इस वैदिक फिलॉसफी को कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये अलग अलग हो सकता है। तो बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गन करते हुए उस दिशा में हम क्रमशः आगे बढ़ते रहे। तो ये मुझे एक सोल्यूशन समझ में आया। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, कहना है मोर क्वेश्चन आंसर्स, कि समराइज ये है कि स्त्री का जो रोल बताया गया एक वैदिक संस्कृति में, उसको हम देखते हैं एक मॉडर्न टाइम्स में बिल्कुल उल्टा है। मॉडर्न टाइम्स में स्त्री को एक सेंस ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, और वो स्त्री भी लिबरेशन के नाम पर उसी को खुद प्रमोट कर रही हैं, उसे उनका शोषण भी और बढ़ रहा है। और केवल स्त्री का शोषण नहीं बढ़ रहा, पूरे समाज में अव्यवस्था फैल रही है, और समाज में अवस्था फैल रही है, अशांति है, और खुशी का स्तर कम होता जा रहा है, जबकि ये लिबरेशन इसलिए थे कि हम ज़्यादा खुश रह सकें। तो क्या है, जितना हम वैदिक धर्म का पालन करेंगे, और वैदिक संस्कृति के पीछे मुख्य फिलॉसफी ये है कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकें, एक दूसरे के आपसी आकर्षण से ऊपर उठकर अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अंत में भगवत धाम जा सके। तो इसको करने के लिए हमें स्त्रियों को, माताओं को, खुद को पहले इस फिलॉसफी को अच्छे ढंग से समझना है। अधिकांशतः क्या होता है कि भक्तों के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, दुख की बात है। हम लोग भक्तों से बात करते हैं, उनको खुद को कन्विक्शन नहीं है इस बात का, और कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। वो सफलता इसी को मानते हैं, अच्छा कैरियर, चाहे लड़की हो या लड़का, और आगे जाके देखते भी नहीं कि क्या होने वाला है, और देख रहे हैं आसपास माई क्या स्थिति है, फिर भी नहीं नहीं आजकल यही चलता है, आजकल ऐसे ही होता है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद बहुत कम भक्तों में हिम्मत होती है उसको पालन करने के लिए। तो हिम्मत देने के लिए सब यही ये भक्तों का संग है कि इस तरह के जो माता जी लोग डिसीजन लेते हैं, हम जानते हैं ऐसे, हम रुड़की में जाते हैं प्रचार करने हैं, वहाँ पे हमारे एक विद्यार्थी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनकी वाइफ भी पीएचडी हैं, उसने सिंगापुर से पीएचडी की, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। उन्होंने पूछा आप कुछ करें, कहते नहीं अभी मैंने डिसीजन लिया है कि मैं घर में रहूँगी। वो बड़ी संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि घर में रह के वो सेवा करती रहती है, ऐसे भी हैं। ऐसे रोहिणी में केशव मैंने बता रहे थे कि एक माता जी हैं जो एमएड किया हो, तो किसी ने पूछा आप घर में क्यों रहती हैं, बोले बाहर निकलती हूँ तो पुरुष लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, ऑफिस में जाऊंगी, स्कूल में जाऊंगी, उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे, उनकी नौकरी से अच्छा है किसी एक व्यक्ति की नौकरी करो घर में बैठे। तो समझदारी है, और साथ में ऐसा नहीं कि घर में खाली बैठना है, अगर घर में समय है तो उसको हम ज़्यादा कृष्णा भावित भावना के प्रचार के लिए लगा सकते हैं, अपने और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, दूसरों को और ट्रेन कर सकते हैं। तो ये देखा जा सकता है केस टू केस, लेकिन मुख्यतः इस वैदिक संस्कृति के पीछे मुख्य अभिप्राय है उसको हम समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। कैसे हो? प्रश्न या टिप्पणी? माता ही लोग क्षमा करना हमने कुछ गलत बोला हो, लेकिन कोशिश की थी कि एक संतुलित देने का प्रयास करें। तो आप मुझे किसी कोई टिप्पणी है प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रचार के लिए भी जाते हैं तो बाहर के गलत पुरुष गलत दृष्टि से माताओं को देख सकते हैं, तो इसलिए अकेले ना जाएं, साथ में जाएं। प्रभुपाद ने जो शहरों में रहने वाले भक्त हैं उनके लिए अलग निर्देश दिए हैं, जो फार्म कम्युनिटी में रहने वाले अलग निर्देश दिए हैं, और शहरों में रहने वाले स्त्रियाँ उनके लिए आदेश दिया कि आप ड्यूटी वर्शिप करें, कुकिंग करें, उसके बाद समय मिलता है तो पति के साथ संकीर्तन पे जाएं, अकेले ना जाए, ग्रुप में जाए। यस मत हाँ, यही तो मिसकंसेप्शन है। जो डिवोटी लड़के हैं वो क्या चाहेंगे कि आने वाली लड़की सुंदर भी हो, 16 माला जब भी करे, 4 नियमों का पालन भी करे, पैसा भी कमा के लाए। कैसे और बस क्या चाहते हैं, कल्प वृक्ष से शादी कर रहे हैं क्या? कि जो चाहूं मिल जाए, फिर जो बच्चा हो बच्चे को भी ध्यान दे, उसको भी अच्छे संस्कार दे, और पैसा भी कमा के लाए, और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा रखें, अच्छी गाड़ी में भी घूमें। और जो स्त्रियाँ होंगी वो भी यही चाहती हैं कि पुरुष दिखने में भी सुंदर हो, पढ़ा लिखा भी हो, 16 माला जप भी हो, 4 नियम भी हो, अच्छा पैसा भी कमाता हो। तो ये कैसे? हाँ, तो इसीलिए जितना अपने जीवन को सरल रखेंगे उतना सही रहेगा। हम दिखावे का जीवन कब तक जीते रहेंगे? दिखावे के जीवन किस लिए? कि दूसरों को खुश करना, उसके लिए हम लोन लेते रहे, सब चीज लोन पे, क्लेश मचा रहे, क्या है ये जीवन? ये कोई जीवन है? सब कुछ जानने बूझने के बाद भी वही दिखावे का जीवन? तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, भक्तों में ही तो हिम्मत होनी चाहिए। तो हिम्मत नहीं है इसका मतलब कन्विक्शन पूरा नहीं है। आज भक्तों के समाज में भी डाइवोर्सिस कितनी दुखदायी बात है। अगर इतना सब करने के बाद भी भक्त पुरुष भक्त स्त्री मिल भी गई तो क्योंकि ट्रेनिंग सही नहीं है तो फिर डाइवोर्स, फिर क्या, तो क्या कैसे डिफरेंट हुए भक्त लोग बाहर के समाज से। ये बड़ी समस्या है। हम लोग चुपचाप बैठे नहीं, हमें कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है भैया, नहीं ये तो आगे हमारे समझ लो हम उस उम्र को क्रॉस कर चुके, हमारे अगले वाले बच्चों के लिए समस्या आने वाली है, तो बहुत बड़ी समस्या है। ये कोई बोला नहीं बस जस्ट चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, लेकिन चैंटिंग करने के लिए एक अच्छा सामाजिक वो चाहिए। ये सब नहीं होगा तो मन कैसे शांत होगा, कैसे हम चैंटिंग करेंगे। तो इसलिए भक्तों को ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो कन्विक्शन क्यों नहीं है समझ नहीं, उसके लिए अच्छे ढंग से फिलॉसफी को पढ़ें, समझें, डिस्कस करें, तभी उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। कितने ही ऐसे, हाँ बिल्कुल, हमने खाली लेडीज का ही नहीं बोला, मेल का भी बहुत मुख्य रोल मेल्स का है।
तो उनका क्या मतलब सपोर्ट होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए ताकि वो ये चीज,
पुरुष को ज्यादा आध्यात्मिक उन्नत होना पड़ेगा। ही हैज टू बी मोर कृष्णा कॉन्शियस, ही हैज टू लीड अ सिंपल लाइफ, उसको दिखाना पड़ेगा सरल जीवन रखें और अपने स्पिरिचुअलिटी से सबको संतुष्ट करें और वैसा ही लीड करें। पुरुष खुद हिला डुला है, उसको सब कुछ चाहिए, उसको इंद्र तृप्ति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है जो कि शास्त्रों में कहीं नहीं है। तो फिर आगे बस कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, वो भी ऐसे ही रहेगा फिर, तभी और कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोसेस को लोग, कृष्णा का ऐसे काम नहीं कर रहा, सही ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे, सही ढंग से समझे नहीं, सही ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे। तो
हाँ, उसका रोल जो आपने बताया कि उसको स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअली स्टेबल रहना पड़ेगा,
yes.
और मटेरियली सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा, तभी yes. तो उसके एक्सपेक्टेशन वाइफ से कम हो।
बिल्कुल, अमृत गौर बाबू,
हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे परिवारों में जो संयुक्त परिवार तो इतने रहे नहीं, एकांकी परिवार हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिखरते गए तो अब जो है ना स्त्रियों में बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सास बहू की नहीं बनती, बहू मतलब उसकी नंद की नहीं बनती, इस तरह की हो रही हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भी चीज़ हमारी, अगर स्त्रियाँ भी हमारी पूरी तरह से कृष्ण भावना में से काफ़ी तो जुड़ी हुई हैं, अगर और जुड़ती चली जाएंगी तो शायद ये भी प्रॉब्लम जो बहुत बढ़ती जा रही है आजकल ये भी नहीं रहेगी। सिर्फ मेरा ये एक सुझाव है।
ये तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से खत्म हो गई है, जेठानी दरानी तो रही नहीं, एक ही बेटा होता है ज्वाइंट फैमिली का मतलब ही नहीं है। वो बेचारे जो सास ससुर होते हैं उनको बेबी सिटिंग दे देते हैं, वो वान प्लस ले नहीं सकते, बूढ़े हुए तो बोले मंदिर क्यों नहीं आते, बोले पोते को संभालना है। क्यों पोते का संभालना है, क्योंकि बहू बेटी दोनों काम पे गए हैं, तभी उनकी जरूरत पड़ी है। अब खुद अमेरिका में होते हैं तो अपनी माँ को अमेरिका में बुला लेते हैं, बड़ा प्रेम है, माँ आपको मिस कर रहे हैं, क्यों बच्चे को संभालना है। वो बेचारी अकेली वहाँ बैठी बस बच्चे को संभाल दे, क्या है ये, जस्ट इंद्र तृप्ति के लिए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इंद्र तृप्ति करनी है, दुखी है कोई बात नहीं, पैसा कमाना है, क्या है जीवन है कोई। यस
थैंक यू जी। जो मेरा क्वेश्चन था जो थर्ड घंटे में जो चार कुमार का वो कंटेक्स्ट आता है, तो उसमें फाइव डिफेंसलेस लिविंग एंटिटी की वो बारे में बोलते भगवान,
पांच
डिफेंसलेस लिविंग, काउ ब्राह्मण चाइल्ड और वुमेन ओल्ड एज, तो उसमें भगवान कह रहे कि जैसे स्पेशली वुमेन, इनको हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए बहुत, और तो और फिर कह रहे भगवान इनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, फिर कह रहे भगवान मतलब श्लोक में कह रहे हैं अपने मुँह से कि फिर ये पांचों स्पेशली वुमेन कि मेरे शरीर के अंग है, पार्ट है, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हो
बताया ना ऐसा, क्योंकि जो भगवान ने संसार की सृष्टि की रचना किस लिए की, कि मनुष्य योनि पात के बद जीव इस संसार से ऊपर उठ सकता है, तो उसमें एक स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पूरे कृष्णा के मिशन में स्त्री सहयोग देती है। स्त्रियों ने सृष्टि की रचना किस लिए की भगवान ने, कि हम सबको मौका मिले कि हम अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम वापिस जा सकें। तो हम अपने इस अस्तित्व को शुद्ध कर सकें, इसमें माँ का रोल बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हम प्रैक्टिकल देखते हैं, मान लीजिए प्रभु जी किसी पुरुष की जो इनकम है वो 10,000 रुपये है, वो इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, और घर का जो खर्च है ज़्यादा है 15,000 रुपये है, और उसमें इंद्रिय तृप्ति भी ज़्यादा नहीं 15,000 में, वो चाहिए 15,000 रुपये, और उसके इसमें माता जी मान लीजिए पढ़ी लिखी है और वो बाहर जॉब कर सकते हैं, इनकम आ सकती है कुछ घर में, तो उस केस में क्या करना चाहिए?
प्रभु जी आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने ये नहीं कहा कि आप कल से स्त्रियों को ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर काम करना पड़ता है, हर एक स्थिति अलग अलग है। कई बार ये प्रभुपा लिख रहे हैं कि पुरुष ही लोफर होते हैं, अगर लोफर पति है कुछ काम ही नहीं कर रहा तो घर में बच्चे हैं तो स्त्री को निकलना पड़ता है बाहर, काम धंधा करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे काम धंधे में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है बिल्कुल ऐसी, तो पीछे का सिद्धांत ना भूलें। सिद्धांत यही है कि माँ का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे इस आकर्षण से ऊपर उठना है और भगवत धाम वापिस जाना, ये मुख्य सिद्धांत रहना चाहिए। अब मजबूरी में सामाजिक जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए काम धंधा करना पड़ रहा है, तो भी हमने वैदिक संस्कृति में दिए, उनको भी काम करना पड़ता था। तो वैदिक संस्कृति ऐसे एकदम कट्टर नहीं है, लेकिन मुख्य फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ सुनना चाहिए, ध्यान से डिस्कस करना चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। भक्त होते हुए भी हम मान लेते हैं ये तो चलेगा ही, ये सबसे बड़ी बात है, बुरी बात है कि शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन शास्त्रों की बातें समझते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमारे पास, प्रभुपाद इतने सुंदर प्रॉपर्ट्स दिए हैं, प्रभुपाद ने कैसे वैदिक शास्त्रों को प्रैक्टिकल बनाना ही सिखाया है, तो वो प्रयास करना चाहिए कि जो हम सुनते हैं उसको कैसे प्रैक्टिकल किया जाए। हम पहले हाथ में उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कथा अच्छी थी कहने सुनने में अच्छी है, पालन करने के लिए नहीं है। हाँ ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्रकाश, ऐसे आसान थोड़ी है, ऑटोमेटिक थोड़ी होता है काम, ऑटोमेटिक भगवत धाम चले जाएंगे बस बैठे रहो, नहीं ऐसे थोड़ी है, प्रयास करना पड़ता है।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, वेरी प्रैक्टिकल, और मैं बहुत रिलेट कर रहा था, हमने अपने जीवन में देखा है और कि माता जी लोग कभी भी भारतीय जो स्त्रियां होती थी वास्तविकता के अंदर, एक तो पहली प्रभु पुरुष लोग कभी पैसा कमाने में एक्सपर्ट होते हैं, बचाने में एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन वो वास्तविकता में सारी लक्ष्मी ला करके घर में दे, गृह लक्ष्मी जैसे आप कह रहे थे, तो वो पूरा घर भी चला देगी और उसके बाद भी उसमें से पैसा बचा लेंगे। ये भारतीय स्त्रियों की ये कला होती थी, ये तो विदेशी स्त्रियाँ हैं जिनको पता नहीं पैसा बचाना कैसा होता है। घर चलाना भली भांति जानता था भारतीय स्त्रियों को, भली अच्छे तरीके से जानती थी। और दूसरा पार्ट कि माता जी लोग, क्योंकि भारत में इतने हर महीने हर 15 दिन में कुछ ना कुछ त्यौहार ही रहता था, तो हमेशा वो बिजी रहती थी घर के अंदर, फेस्टिवल मनाने, कुकिंग करने के अंदर, अब इतने सारे आइटम बनाएगी तो बच्चे बाहर खाते नहीं थे कभी। ये जो आज स्कूल में कैंटीन में खाते हैं, ये सिर्फ आलसी माताओं के कारण है जो कुकिंग करना नहीं जानती, कर नहीं सकती। क्योंकि हमने देखा है कितनी भी थकी हो, क्योंकि माता जो कुकिंग करेगी उसमें जो प्रेम होगा, उसमें जो स्नेह होगा, उसमें जो टेस्ट होगा, वो कभी बाहर के किसी आइटम में नहीं हो सकता। तो उसके कारण बच्चों का जो संस्कार होता था, वो पारिवारिक रिश्ते भी बने रहते थे, वो प्रेम रहता था, और इस प्रकार से माताएं कभी खाली रहती नहीं थी घर के अंदर, इतना सब कार्य होता था बच्चों के लिए और पति के उसके लिए।
थैंक यू, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब वो स्त्री क्यों बनाएगी, वो ऑफिस से थक के इतनी आती है, मेट्रो से 2 घंटे थक के आएगी, उसकी इच्छा ही नहीं होती, नौकरानी रखी हुई है, बाहर जाके खा लेंगे, पिज्ज़ा मंगवा लेंगे, क्या बच्चे को वही खिलाएंगे, तो बच्चा कैसे कमिटेड होगा, तो इस रिलेशनशिप से रहे, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस माता जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हमारी जनरेशन के साथ हो गया, हम स्कूल में गए, पढ़ा लिखे या पढ़ाई लिखाई की है, तो फिर कुछ कोई पीयर प्रेशर है, सब जॉब करते हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, ये सब है, तो इसकी क्या आवश्यकता। अंततः इसका रिजल्ट तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी संस्कृति में स्त्रियों की एक अलग शिक्षा होती थी, तो वो करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जैसे लॉन्ग टाइम ग्रेजुअली इस तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए पूरा वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए और स्त्रियों को अलग से उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। वो अभी जिस स्थिति में हम खड़े हैं अभी नंग लगे निकट भविष्य में हो जाएगा, लेकिन उस दिशा में हमें चलना शुरू होना चाहिए। लेकिन ये मालूम है, प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, हम अगर ऐसे बाहर हमें जाना पड़ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोगों को जोड़ें भक्ति से और अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित ना हो। हम इसको इतना ग्लैमरस ना समझें, हम सोचें ठीक है अब जरूरत है तो करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सही अल्टरनेटिव हम विकसित नहीं कर पाए। सही अल्टरनेटिव होगा कि वर्णाश्रम पूरा धर्म हो, उसके साथ साथ स्त्रियों के लिए अलग शिक्षा हो, पुरुष के लिए अलग शिक्षा हो, तो उसमें अभी समय लगेगा, अभी हमारी संस्था इतनी ग्रो नहीं कर पाए। सो इट्स नॉट सो ईजी, पूरा डेमोनिक आसुरी समाज में कृष्ण भावनावित होना आसान नहीं है। तो हम यही कर रहे हैं, चलो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन यही कर रहे हैं। अब जो शिक्षा आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं तो उसको प्रचार में करो, ये रियल अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है। लेकिन ये इससे सारी समस्याओं का असली समाधान नहीं होने वाला। अब कुछ कर रहे हैं तो प्रचार ही कर लो इसको कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए। सही सोल्यूशन तो वर्णाश्रम का ही है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।